الحمد لله رب العالمين، قاصم الجبارين، مبير الظالمين، مدرك الحاربين، رب الشهداء والصديقين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين، رحمة للعالمين، شفيع المذنبين، والمخاطب بطه وياسين، أبي القاسم محمد. وآله وقطرته وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المكرمين المنتجبين، سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر، اللهم أجل له الفرج، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صلوات. اگرچہ یہ میری ہیبٹ تو نہیں ہے کہ اپنی پرسنل سفرنگز آپ کو بتاؤں، لیکن چونکہ آج رات کی مجلس ذرا شارٹ بھی رہے گی اور تھوڑا سا آپ کو یہ لگے گا کہ ذرا آرگنائز وے میں نہیں ہے، اس لیے مجھے یہ چیز آپ کو اب ریمائنڈ کرانا ضروری ہے کہ بہت لمبی مور دین 26 آورز کی فلائٹ جو لیٹ بھی ہو گئی، جس کی وجہ سے میں ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی آپ کے شہر میں پہنچا ہوں، اور اگرچہ اپنی پوری کوشش کروں گا کہ آپ کا یہ جملہ نہ سنوں کہ اٹس نن آف آور بزنس، آپ لیٹ ہوئے تو یہ آپ کا پرابلم، آپ نے فلائٹ اتنی لمبی لی تو یہ آپ کا پرابلم، کوشش کروں گا کہ آپ کا یہ کامنٹ نہ آنے پائے، لیکن پھر بھی میں خود یہ محسوس کر رہا ہوں کہ ایک تو حج کا اتنا ٹائرنگ سفر، اور اس کے فوراً بعد پھر یہ والی ٹریولنگ، شاید آج رات کی مجلس آپ کو ویسی محسوس نہ ہو جس کے لیے آپ ایک سال سے انتظار کر رہے تھے. اچھا، اب آئیے پہلے بات تو یہ کر لوں، ایک جنریشن پوری اس لیسٹر میں گزر گئی ہے کہ جس کی میں خدمت کرتا آ رہا ہوں. آج سے کوئی 25 سال پہلے، کوارٹر سینچری اگو، فرسٹ ٹائم میں یہاں پہ آیا تھا، اور ماشاء اللہ اب اس دفعہ آ رہا ہوں. یہ اتنا اچھا زخانہ، یہ اتنا اچھا امام بارگاہ، وہ بھی بہت اچھا تھا، لیکن اب آپ کی آبادی، آپ کا نمبر اتنا بڑھ گیا ہے کہ وہ چھوٹا بھی پڑ رہا تھا، وہاں کے پرابلمز بھی تھے. تو اگرچہ لاسٹ ایئر 1428 ہجرا کا محرم یہاں ہو چکا ہے، لیکن چونکہ میں فرسٹ ٹائم یہاں پہ آیا ہوں، یہ 1429 ہجرا کی فرسٹ نائٹ، تو اللہ ان تمام مومنین اور مومنات کو جزائے خیر دے کہ جن کی کوششوں اور ایفرٹس کے نتیجے میں لیسٹر میں یہ اتنا شاندار امام بارگاہ بنا. کچھ لوگوں نے ڈونیشنز دیے ہوں گے، کچھ لوگوں نے اپنا ٹائم دیا ہوگا، کچھ لوگوں نے اپنی ایڈوائس دی ہوں گی. انشاءاللہ یہ سب اس دنیا میں بھی اس کا ریوارڈ پائیں گے، اور آخرت میں تو ان کا ریوارڈ اپنی جگہ محفوظ ہے. لیکن ایک بات ابھی سے سن لیجیے، اور ہو سکتا ہے کہ لاسٹ ایئر تھوڑا بہت آپ نے اس کو فیل بھی کیا ہو، اور وہ یہ ہے کہ یقیناً جب یہ ایک نیا امام بارگاہ بنایا گیا تو بہت پلاننگ کے ساتھ بنایا گیا ہوگا، اور آپ کی جو نیکسٹ 10 یا 20 ایئرس کی نیڈس اینڈ ریکوائرمنٹس ہوں گی اس کو ذہن میں رکھ کے اس کو بنایا گیا ہوگا. میں فیوچر کو دیکھ تو نہیں سکتا ہوں، علم غیب تو میرے پاس نہیں، لیکن ساری دنیا کا میرا ایکسپیرینس یہ کہ جیسا بھی امام باڑہ یا آزاخانہ بنایا جائے، اور جتنی بھی اس کے بارے میں فیوچر پلاننگ کر لی جائے، ہر امام بارگاہ، ہر آزاخانہ ود ان 5 ایئرس وہ چھوٹا محسوس ہونے لگتا ہے، اور پھر آدمی یہ سوچتا کہ اب اس سے بڑی جگہ پہ جاؤ. نارتھ امریکہ میں جہاں پہ لینڈ کوئی پرابلم نہیں ہے، بہت ہی سستی بھی ہے، 20-20 سال اور 25-25 سال کے لوگوں نے پلاننگ کی کہ آج ہمارا نمبر یہ ہے، آج ہماری پاپولیشن یہ، अब एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाओ कि 20 साल तक हमें फिर जरूरत ना पड़े कहीं और जाने, और 2 साल के अंदर जगह कम पड़ने लगी, और ऐसा होता ही रहेगा, इसलिए कि हमारे पास हदीसों में भी ये मौजूद कि यकीनन ये हुसैन की दुखियारी माँ फातिमा जहरा की वो दुआ है कि अल्लाह उनके लाल का मातम करने वाली ये कौम को पैदा करेगा और इनकी तादाद हमेशा बढ़ती चली जाएगी। आप कितना ही वेल प्लान्ड होके कोई प्रोजेक्ट क्यों ना बनाए, हुसैन के आजादारों की तादाद बढ़ती जाएगी। और ये भी जहन में रखिएगा, ये 1429 हिजरा का मुहर्रम जो शुरू हो रहा, तो ये भी जहन में रखिएगा कि जहां जहां पे आजादारी हो रही हर उस जगह पर भी लोगों की तादाद बढ़ेगी। और ये भी जहन में रखिएगा कि जहां जहां आजादारी हो रही वो जो प्लेसेस हैं, वो जो जगह हैं, उनकी तादाद भी डबल और फिर 10 टाइम्स और फिर 20 टाइम्स होती रहेगी। एक वक्त वो आएगा कि ईस्ट से लेके वेस्ट तक, नॉर्थ से लेके साउथ तक, हर जगह सिर्फ हुसैन हुसैन और हुसैन का नाम होगा। कितनी ही ऐसी जगह जो हमने अपनी शॉर्ट लाइफ में देख ली जहां हुसैन का नाम लेना सबसे बड़ा जुर्म था, और आज ये हालत ये कि शायद उस अंदाज से हमारे और आपके यहाँ आजादारी ना होती हो जिस अंदाज से वहां पे होती है। बहुत ही छोटी सी मिसाल, सऊदी अरब, और जिस साल मैं फर्स्ट टाइम लेस्टर में आया था, आज से तकरीबन 23 इयर्स बैक जाइए तो उसी साल हज हमने ये भी देखी थी अहले बैत की एनिमिटी, आले मोहम्मद का नाम लेना तो मना था ही। हालत ये थी कि अभी हमारे मोहतरम इंग्लिश स्पीकर दुआए कुमैल आपका टेस्ट ले रहे थे, और दुआए कुमैल के से रिलेटेड एक सवाल किया। ये दुआए कुमैल जो पूरी दुआए कुमैल में शुरू से लेके आखिर तक कहीं भी अहले बैत का ना जिक्र है ना फजाइल, बिल्कुल आखिरी लाइन में जाकर वह आले ही का एक लफ्ज आ जाता है, वरना शुरू से लेके आखिर तक इस दुआए कुमैल में आले मोहम्मद का कोई तस्किरा नहीं। यहां तक कि कुछ ऐसे मोमिनी ने कराम भी, आपके लिए बड़ा सरप्राइजिंग होगा, लेकिन है कुछ ऐसे मोमिनी ने कराम जो इसीलिए दुआए कुमैल नहीं पढ़ते कि उनको ये फील होता है कि दुआए कुमैल किसी वहाबी की बनाई हुई दुआ है, नऊज बिल्ला और अस्तग़फिरुल्लाह, कि इसके अंदर कहीं आले मोहम्मद का तस्किरा ही नहीं। लेकिन मैंने अपनी आंखों से ये देखा कि हज करने वाले जब हज पे जा रहे हैं, और उस जमाने आज से 20 साल पहले, आज से 15 साल पहले हाजियों का कसम कितना सख्त होता, कितने स्ट्रिक्ट है ये, कितने ही यहां पे लोग मुझे अपने राइट लेफ्ट सामने हर तरफ नजर आ रहे हैं जिन्होंने 20 साल पहले हज किया और इस साल का भी हज किया। उनको तो यकीन नहीं आ रहा होगा कि ये वही सऊदी अरब और ये वही उनकी अथॉरिटीज जो आज इतनी लीनियंट है और 20 साल पहले इतनी स्ट्रिक्ट थी। अब ये सो कॉल्ड ह्यूमन राइट्स के चैंपियन जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, यहां पे आदमी को ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना होते हैं इमिग्रेशन और कस्टम में, और वहां जाके देखिए तो बिल्कुल मामला उल्टा हो चुका। लेकिन ये हमारा आज का टॉपिक नहीं है, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि 20 साल पहले 25 साल पहले हाजी का कस्टम किस तरह होता, उसका सामान एक एक करके निकाला जाता था, एक दुआए कुमैल किसी मोमिन के पास निकला। मफातिहुल जिना तो यकीनन एक बड़ी डेंजरस और खतरनाक किताब थी सऊदी अरब में भी और सद्दाम के इराक में भी, लेकिन दुआए कुमैल, और जैसे ही वो दुआए कुमैल निकल आई, छोटी सी दुआए कुमैल पॉकेट साइज, मैंने अपनी आंखों से देखा कि कस्टम ऑफिसर ने उसे जमीन पे फेंका और उस पर अपना पैर रखा, अपने बूट रखे, और इस तरीके से अपने जूते उस दुआए कुमैल पे चला रहा कि उसके वरक थे, जो उसके पेपर थे, वो टुकड़े टुकड़े हो गए। अब थोड़ी बहुत अरबी तो मुझे आती है, इसलिए मैंने एक बार उससे ही दरियाफ्त किया कि आखिर इसके अंदर क्या ऐसी बात कि दुआए कुमैल जिसमें सिर्फ अल्लाह का नाम है, जिसमें सिर्फ तौबा है, जिसमें सिर्फ इस्तिग़फ़ार है, जिसमें सिर्फ अपने गुनाहों पे आदमी रो रहा है और कयामत को याद कर रहा। मेरा जहन भी उस तरफ नहीं था, लेकिन देखिए उनकी दुश्मनी, एक एक चीज उनको मालूम है, उसने फटी हुई दुआए कुमैल उठाई और उसकी सिर्फ फर्स्ट लाइन मुझे दिखा, जो यही तो है कि रवा कुमैल इब्ने ज़ियाद अन अली इब्ने अबी तालिब, कि कुमैल ने रिवायत किया अली इब्ने अबी तालिब से कि वो ये दुआ बता रहे हैं। सिर्फ एक लफ्ज आया अली इब्ने अबी तालिब का और वो कहता ये लफ्ज, ये देख रहे हैं ये लफ्ज अली इब्ने अबी तालिब से इतनी नफरत और दुश्मनी کہ اس کی خاطر وہ اس دعائے کمیل پر جو آغازی اللہم سے ہو رہا، اللہم انی اسلک برحمتک، اللہ کے نام کو بھی وہ مٹانے کو تیار ہے. یہ وہ سعودی عرب. اور آج سے 22 سال پہلے جب کی میں بات کر رہا ہوں، میں دوسری ڈیٹیل میں تو جا ہی نہیں رہا ہوں، اگرچہ ایام عزا کی پہلی مجلس میں آج کل میری ایک ہیبٹ سی بن گئی کہ تھوڑا بہت سعودی عرب کا یہ حج کا تذکرہ اس لیے ہوتا کہ یہ جسٹ آفٹر حج ایام عزا کی پہلی مجلس ہوتی تو ہو سکتا ہے کہ آج کی مجلس میں بھی آگے چل کے ایک دو باتیں ایسی آ جائیں. لیکن فی الحال میں اپنے ٹاپک پر ہوں. اور وہ اسی سال جس سال یہ واقعہ دعائے کمیل کا ہوا، اور جس سال میں فرسٹ ٹائم پھر لیسٹر آیا، اور اسی سال سعودی عرب کے ایسٹرن پروونس کے اندر جہاں آج بھی مومنین کرام کی میجورٹی. اور یہ آپ ایک ذہن میں رکھیے گا، ایک میپ اگر آپ رکھے مڈل ایسٹ کا تو اس میپ کو آپ دیکھیے گا کہ آئل صرف ان علاقوں میں ہے کہ جہاں پہ صاحبان ایمان کی اکثریت. وہ ساری گلف اسٹیٹ دیکھ لیجئے، وہ سارا ایران عراق کا کی وہ لائن دیکھ لیجئے، اور سعودی عرب کا بھی صرف کوئی ایسٹرن پروونس. جو کچھ بھی اس وقت دنیا کے حالات، جو کرنٹ سچویشن آپ کے سامنے، جو نیو میپ مڈل ایسٹ کا آ رہا، اس کے پیچھے بہت بڑا حصہ اس آئل کا بھی، اگرچہ اس کے پیچھے ایک اور ریزن بھی ہے، دو مین ریزن. یہ یاد رکھیے گا کہ اس سال کے عشرے میں ہماری مجالس، ہماری ڈیوٹیز 21st century میں، لیکن کربلا کی روشنی میں. کربلا یہ ہر مجلس کے بیک گراؤنڈ میں رہے گی، لیکن اس کربلا کو ذہن میں رکھ کے ہم کو یہ دیکھنا کہ 21st century میں ہماری ڈیوٹیز کیا ہیں، ہماری ریسپانسبلٹیز کیا ہیں، تو اس میں یہ زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ بات آئے گی. تو ایسٹرن پروونس میجورٹی ہے صاحبان ایمان کی، میجورٹی ہے مومنین کرام کی، اور وہیں پہ یہ سارا آئل بھی سعودی عرب کا جو استعمال ہو رہا ہے اینٹی اہل بیت پروپیگنڈے کے لیے. پوری وہابیت صرف اور صرف اپنے پیسے کے ذریعے سے چل رہی ہے کہ جو ساری دنیا کے اندر ان کے اسلامک سینٹرز. لیکن ابھی تھوڑی دیر کے بعد میں یہاں پہ جا رہا ہوں، ابھی تو صرف اتنی سی بات کہ وہاں پہ ایرانی ریولیوشن کے بعد ایک ماتمی جلوس سڑک پہ کچھ نوجوانوں نے نکالا تو ہیلی کاپٹر سے فائرنگ کر کے اس پورے جلوس کو شہید کر دیا گیا، اور وداؤٹ اینی وارننگ. یہ 25 سال پہلے کی بات. اور آج اسی سعودی عرب میں جس انداز کی آزاداری ہوتی اور جس طرح سے مجلسیں ہوتی ہیں، ایون وہی شہر جہاں پہ آج سے 22 سال پہلے ہیلی کاپٹر سے فائرنگ کر کے اس پورے جلوس کو اس لیے شہید کر دیا گیا کہ وہ حسین کا نام سڑکوں پہ لے رہے ہیں، آج وہاں پہ جلوس نکلتا ہے اور باقاعدہ اس جلوس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے سعودی عرب کی ملٹری آتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ ہم آپ کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی آپ پہ اٹیک کر دے، کوئی بوم ایکسپلوژن ہو جائے اور بدنامی ہماری ہو. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ 3 سال پہلے جب میں دارالسلام سے مجلسیں پڑھ کے جا رہا تھا اور دبئی ایئرپورٹ پہ ہمارا اسٹے ہوا تھا تو وہاں نیوز پیپر کی ہیڈ لائنز تھی کہ سعودی عرب کے اس شہر کے اندر اس سال عاشورے کے دن جلوس نکلا، اور جب پہلا جلوس نکلا تھا، جب وہ جلوس چل رہا تھا تو چاروں طرف سے ملٹری نے آ کر اس کو کواٹ کیا اور گھیرے میں لیا. اور وہ لوگ جو جلوس نکال رہے تھے وہ تو حسین کے نام پہ مرنے کو تیار تھے، لیکن جب انہوں نے دیکھا ملٹری آ رہی تو ایک بار وہ رکے کہ شاید ہم کو ان سے فائٹ کرنا پڑے، لیکن وہ ملٹری قریب نہیں آئی، ایک ڈسٹینس پہ آ کے رکی. اور اس کے بعد وہ جو میجر تھا اس بٹالین کا یا پلاٹون کا یا اس کمپنی کا، وہ آگے آتا، آگے پہلے تو علم کو سلوٹ کرتا اور اس کے بعد کہتا ہے کہ ہم سے ڈرے نہیں، گھبرا نہیں، ڈونٹ بی افریڈ، ہم آپ کو پروٹیکشن دینے کے لیے آئے ہیں. اور اس سال سے لے کے آج تک اس سعودی عرب میں جہاں اہل بیت کے نام سے اتنی دشمنی ہے کہ میں نے تو خالی ایک سمپل ایگزامپل آپ کے سامنے کوٹ کی، کیونکہ میں ڈر رہا ہوں کہ اگر میں اس کی ڈیٹیل میں چلا گیا تو میرا آج کا ٹاپک ایک جگہ رہ جائے گا. یہ وہی سعودی عرب کہ جہاں ہر وہ جگہ جس سے اہل بیت کا تعلق، وہاں پہ وہ ٹوائلٹ بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور تو اور حضرت خدیجہ کا گھر جو اتنی اہم اسلام کے اعتبار سے اتنی اہم جگہ ہے عبادت کی، اور وہاں بھی ٹوائلٹ بنائے جا رہے تھے، وہ تو ایک انجینئرنگ فالٹ آ گیا جس کی وجہ سے 100 میٹر کا فرق رہ گیا. البتہ میں ایک اور کانٹیکسٹ میں یہ بات آگے مجلس میں ریپیٹ کروں گا، مجھے فی الحال آج کی مجلس میں سعودی عرب کے حالات بیان کرنے سے کوئی انٹرسٹ نہیں. میں تو صرف یہ بتانا چاہ رہا کہ جہاں حسین کا نام لینا سب سے بڑا جرم تھا، وہاں بھی آج حسین حسین کی آواز بلند ہو رہی، وہاں آج بھی جلوس نکل رہے ہیں، وہاں آج بھی اسی طرح سے علم نکل رہے ہیں جو لوگ یہ کہہ رہے تھے. جس طریقے سے رشیا میں ایک زمانے میں اسٹالن نے کہا تھا نا کہ پوری دنیا میں کہیں بھی اللہ ہوگا، رشیا وہ جگہ ہے جہاں سے ہم نے اللہ کو نکال باہر کیا ہے. آج ہم نے دیکھا کہ خود اسٹالن اور اس کا نظام وہاں سے نکل گیا. اسی طرح جن لوگوں نے یہ سوچا تھا کہ پیسے سے وہابیت کو پھیلا کر ہم نے علی کا نام اور حسین کا نام مٹا دیا ہے، آج انہی کے شہروں میں اور آج انہی کے سامنے حسین حسین کی آواز گونج رہی ہے. اور جیسا کہ میں نے کہا کہ اگر ہم بس اب یہ جو جملہ ہے نا، یہ میرا آگے ٹاپک بنے گا 9 یا 10 دن، اگر ہم نے صحیح طریقے سے امام حسین کا انٹروڈکشن دنیا کے سامنے کرا دیا تو خالی سعودی عرب نہیں، ساری دنیا میں ہر جگہ حسین حسین کا نام ابھی آ جائے گا. ورنہ یہ تو یقین رکھیے کہ جب ہمارے زمانے کے امام ظاہر ہوں گے تو اس وقت تو ساری دنیا میں صرف حسین ہی کا نام چل رہا ہوگا. تو اس وقت ازاخانے چھوٹے پڑ رہے ہیں. 20-20 سال بعد کے جو ذہن میں پلان کر کے امام باڑے بنائے گئے ہیں وہ 2 سال کے اندر فل ہوئے جا رہے ہیں، جہاں کے بارے میں آدمی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہاں بھی کبھی آزاداری پہنچ سکتی ہے، وہاں بھی آج ہر طرف حسین کا نام گونج رہا ہے، حسین کا نام چل رہا ہے. مگر ایک بات یہ یاد رکھیے کہ جب یہ حسین کا نام ہماری زبان پہ آئے، اور میں نے جو ابھی بات کہی وہ اس لیے کہی کہ ہم اور آپ اس 21st century میں زندہ، ورنہ حسین کا نام تو اول دن سے اس دنیا میں لیا جا رہا. پہلی مجلس میں اکثر یہ روایتیں آپ نے سنی ہوں گی کہ جب آدم کو اس دنیا میں اتارا گیا اور جو لوگ حج کر کے آئے وہ ابھی عرفات کے میدان میں اور صفا پہاڑی پہ یہ روایت سن کے آئے ہوں گے کہ آدم کو جب اس دنیا میں اتارا گیا تو آخر میں وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے مکے کی زمین پہ پہنچے، مگر جب وہ اس دنیا کے اندر جنت سے اس دنیا میں اترے، کہاں اترے؟ بعض علماء کہتے ہیں کہ سری لنکا میں، اور بعض کہتے ہیں کہ عرفات پہاڑی پر، اور بعض کہتے ہیں صفا پہاڑی پر. یہ ڈیٹیل چھوڑ دیجئے، نہ میرے پاس ٹائم ہے نہ اس کی آج ضرورت. آدم جب اس دنیا کے اندر چل رہے تھے اور مکے کو ڈھونڈ رہے تھے اور اپنی بیوی حوا کو سرچ کر رہے تھے، تو چلتے چلتے ایک جگہ آدم کے پیر میں ٹھوکر لگی اور خون جاری ہو گیا. گھبرا کے کہا پروردگارا یہ کون سی جگہ ہے کہ جہاں اس طرح سے میں زخمی ہوا ہوں؟ کہا کہ یہ کربلا کی زمین ہے، اور یہ وہ زمین ہے کہ جہاں پہ جو تمہارا سردار ہے اس کا نواسا اس طرح شہید کیا جائے گا. یہ پہلی مجلس ہے جو اس دنیا میں اس طرح پڑھی جا رہی ہے کہ مجلس پڑھنے والا اللہ رب العالمین ہے اور مجلس سننے والے حضرت آدم ہیں. جب طوفان نوح آیا، اور جیسا کہ ابھی اس مجمع میں مجھے کچھ وہ فیسز بھی نظر آ رہے ہیں جو اس سال حج کے موقع پہ کربلا اور نجف کی زیارت کر کے آئے، تو نجف ہی میں تو وہ جگہ ہے کہ جہاں سے پہلی بار وہ پانی نکلا جو طوفان نوح بن گیا. جب طوفان نوح آیا اور حضرت نوح کی کشتی جو پروٹیکشن تھی اس زمانے کے لیے، امان جو اس میں بیٹھ گیا، وہ ہر خطرے سے بچ گیا، لیکن وہ اس پانی پہ بہہ رہی ہے چونکہ یہ پروٹیکشن دینے والی ہے تو بہت اسموتھ چلی جا رہی ہے. مگر ایک جگہ جا کے یہ کشتی اس طرح ہلنے لگی کہ ایسا لگا کہ اب ڈوبی اور اب ڈوبی. حضرت نوح کا دل گھبرا گیا. پروردگارا یہ کشتی ساری دنیا میں چل رہی ہے، یہاں پہ اس کشتی کو یہ پرابلم کیوں ہو گیا؟ کہا اس لیے کہ یہ کربلا کی زمین ہے جس پہ اس وقت یہ کشتی چل رہی ہے، اور یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں تمہارے سردار کا نواسا اس مظلومیت کے ساتھ مارا جائے گا. ایک طرف طوفان نوح ہے اور دوسری جانب رب العالمین دوسری مجلس نوح اور نوح کی کشتی میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے سامنے پڑ رہا ہے. حضرت ابراہیم بابل بہت قریب ہے نا وہاں سے. حضرت ابراہیم کی برتھ پلیس، حضرت ابراہیم گھوڑے پہ بیٹھ کر گزر رہے ہیں، گھوڑا چل رہا ہے. ایک بار گھوڑے نے ٹھوکر کھائی، حضرت ابراہیم گھوڑے سے زمین پہ گرے، پیشانی پہ زخم پیدا ہوا، بلڈنگ شروع ہو گئی. گھبرا کے کہا خدا بندہ یہ کون سی زمین ہے؟ ایک مرتبہ جواب ملا ابراہیم یہ کربوبلا کی سرزمین ہے، اور یہاں پہ تمہارے سردار کا نواسا شہید کیا جائے گا. حضرت سلیمان نبی جن کی ساری دنیا پہ حکومت تھی، حتیٰ یہ کہ سمندر اور ہوا پر بھی حکومت تھی، ان کا تخت بہتا چلا جا رہا. ابھی ہمارے محترم انگلش اسپیکر اول الاولین کی جو تشریح کر رہے،
और बता रहे थे कि जो चीजें भी आज दुनिया में, लेकिन अव्वल कौन है? तो आज जिस अंदाज से एयर ट्रेवल का कंसेप्ट है, हजरत सुलेमान का तख्त हवा पे बह रहा, वो जमीन पे नहीं है, वो समंदर में नहीं है, वो हवा पे बह रहा, उसको हवा लेके जा रही है और बड़े स्मूथ तरीके से चला जा रहा है जैसे एयरक्राफ्ट जाता है, एयरप्लेन जाता है। मगर एक ऐसी जगह कि जहां पे ये तख्त गोया तकरीबन उल्टा हो गया, 45 के एंगल पे झुका, सुलेमान नबी घबराए कि शायद मैं स्लिप होकर जमीन पे गिर जाऊंगा। घबरा के कहा, खुदा बंदा ये कौन सी जगह है? कहा, सुलेमान ये कर्बोबला की जमीन है। गर्द ये कि हमारे पास हजरत मूसा की रिवायत, हजरत दाऊद की रिवायत, हजरत ईसा की रिवायत, एक एक नबी के बारे में वाकया मिलता है, तो ये तो उस जमाने से मजलिस का सिलसिला चल रहा है। लेकिन मैंने ये सोचकर कि हम और आप 21st सेंचुरी में जिंदगी गुजार रहे हैं, इस वक्त की एक आध करंट एग्जाम्पल दी, तो आदम से लेके खातम तक और हमारे रसूल से लेके जुहूर इमाम तक इस दुनिया में हर जगह हुसैन का नाम लिया जा रहा था, लिया जा रहा है और इंशाल्लाह कयामत तक यही नाम चलेगा। मगर अब इसके बाद जब ये हर जगह हुसैन का नाम लिया जा रहा, तो एक सवाल ये पैदा होता कि इतना ज्यादा हुसैन का तस्किरा इस्लाम हमसे क्यों करवा रहा? यकीनन हुसैन का अपना स्टेटस, हुसैन की अपनी कुर्बानी, मगर इसके अलावा इसमें हमें भी एक बहुत बड़ा स्टेटस मिलना। आपने अक्सर ज़ियारत वारिसा के आखिर में यह जुमला पढ़ा होगा, फया लैतनी कुंतो माकुम फाफूजा माकुम। बस यही मेरा टॉपिक बनने वाला है बाद की 10 मजलिसों। ये असल में है क्या? ये असल में उस मोमिन के सवाल के जवाब में, एक मोमिन ने सवाल किया, उसको रिप्लाई दिया सादिक आले मोहम्मद इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने। और जिसने भी करबला के वाकये पर रूटीन और हैबिट नहीं, दिल की गहराई से गौर किया और गम मनाया, तो यकीनन ये सवाल उसके जहन में भी आएगा। ये सब मोमिन सवाल करता है कि फर्जंद रसूल, कितना मेरा दिल चाहता है कि काश आशूर के दिन 10th ऑफ मुहर्रम 61 हिजरा मैं भी करबला के मैदान में होता और अपने आका हुसैन के सामने अपनी जान देता। किसी आदमी का जन्म, किसी आदमी की बर्थ उसके अपने कंट्रोल में नहीं। अल्लाह ने आखिर हमें क्यों इस वक्त पैदा किया? उस वक्त मैं पैदा होता और अपने आका के सामने अपनी जान देता, अपने आका के सामने अपने आप को कुर्बान कर देता। इमाम ने फरमाया, ये वाकान तुम्हारे दिल में ख्याल आता? कहा कि ये फर्जंद रसूल, कम अज कम जब आशूर का दिन आता है सारा दिन मैं ये सोचता रहता हूं कि यहां बैठ के गम कर रहा हूं, काश 61 हिजरा के करबला में होता। इमाम ने कहा, जब करबला वाले तुम्हें याद आए और तुम्हारे दिल में ये ख्याल पैदा हो कि काश मैं 61 हिजरी में करबला में होता, तो बस इतना कह देना, फया लैतनी कुंतो माकुम, ऐ करबला के शहीदों काश मैं तुम्हारे साथ होता, फाफूजा माकुम, तो तुम्हारे साथ मैं भी इतने हाई स्टेटस को पाता। मोमिन ने कहा, मौला ये कहने से क्या होगा? कहा, अगर जबान से कह रहे और दिल में भी तुम्हारे ये ख्याल है तो याद रखो कि अल्लाह तुम्हें करबला वालों का साथी बनाएगा। और यहां पर मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन करबला वालों का साथी अल्लाह बनाएगा कब? आखिरत और कयामत में भी और इसी दुनिया में भी, जब आफ्टर जुहूर इमाम जमाना करबला का लश्कर दोबारा आएगा, जिसकी डिटेल रिवायतों में आई है। और उसमें एक जुमला ये भी है कि जिस इमाम ने, मैं रेफरेंसेस नहीं दे रहा हूं इसलिए कि आज न टाइम ऐसा है और न ही मैं फिजिकली इतनी लंबी मजलिस पढ़ने के काबिल हूं, सिर्फ एक बात, मैं रेफरेंस नहीं दे रहा हूं, लेकिन जिन इमाम मासूम ने हमें डिटेल बताई कि करबला का लश्कर जब वापस इसी दुनिया में आएगा, नॉट इन आखिरा, आखिरत तो है, इसी दुनिया में आएगा आफ्टर जुहूर, तो उन्होंने ये भी बताया कि ये लश्कर थाउजेंड्स एंड थाउजेंड एंड थाउजेंड्स ऑफ सिपाही इसके अंदर होंगे। सुनने वाले मोमिन ने फौरन सवाल किया था, मौला उस वक्त तो करबला में तकरीबन 100 आदमी थे, 72 या 100 या 108, लेकिन बहरहाल अराउंड 100 100 थे, और आप कह रहे हैं कि जब वापस आएंगे तो हजारों वापस आएंगे, ये मौला कैसे होगा? करबला की आर्मी का रिक्रूटमेंट क्या अभी भी जारी? करबला की आर्मी में क्या अभी भी आदमी अपने आप को रिक्रूट कर सकता है और ज्वाइन हो सकता? इमाम ने फरमाया, हाँ, जिसने ये जुमला कहा फया लेतनी कुंतो मां को, खाली जबान से नहीं कहा बल्कि डेप्थ ऑफ द हार्ट, दिल की गहराई से ये कहा, करबला वालों काश मैं तुम्हारे साथ होता। मगर एक जुमला और सुनिए जो मेरा टॉपिक है, और अपने जमाने में करबला की ड्यूटी को पूरा किया, जब कभी आका हुसैन आएंगे तो अकेले सिर्फ 61 हिजरी के 72 आदमियों को लेके नहीं आएंगे, 1429 हिजरा या 2008 के जमाने में भी जो जो मोमिन करबला के हवाले से अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा, चाहे वो लबनान के हिजबुल्लाह हो और चाहे वो इराक के साहिबान ईमान हो और चाहे वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के वो मोमिनीन कराम हो, कि जिनके हालात की डिटेल तो आपके सामने आती भी नहीं है, ये सब हुसैन की फौज में शामिल होंगे। अल्लामा मजलिसी अपनी एक किताब में एक वाकया कोट करते हैं, गर्च ये वाकया है तो मौला के रेफरेंस से, मगर करबला पे भी यही रूल अप्लाई हो रहा। और वो वाकया क्या, वाकया ये कि अल्लामा मजलिसी एक बहुत बड़े आलिम का तस्किरा कर रहे हैं कि वो अपने बेटे के साथ मस्जिद कूफा में नमाज पढ़ने गए, और मस्जिद कूफा वो मस्जिद कि जहां पे मक्के और मदीने के बाद नमाज का सवाब भी सबसे ज्यादा, और जो अक्सर मराजे कहते हैं कि एतिकाफ तो हो ही सकता है दुनिया की सिर्फ चार मस्जिदों, उसमें मक्के और मदीने के बाद तीसरे नंबर पे मस्जिद कूफा आती। मस्जिद कूफा की अहमियत का अंदाजा इससे करें कि ट्रैवलर या मुसाफिर सफर में हर जगह चार रकत की नमाज दो रकत पढ़ता, लेकिन चार जगह दुनिया की ऐसी हैं कि जहां पे उसे पूरी पूरी नमाज पढ़ने की परमिशन है, ट्रैवलर मुसाफिर को भी, जिसमें मक्का और मदीना तो समझ में आता है, करबला समझ में आता है, फिर मस्जिद कूफा भी है। पूरे इसके एक घंटे के फजाइल हो सकते हैं लेकिन जरूरत नहीं, वहां सारी सारी रात लोग इबादत करते हैं। मैं अपने वालिद के साथ, वालिद एक बहुत बड़े आलिम दीन अल्लामा मजलिसी इस वाकये को लिख रहे हैं, बेटा कह रहा है मैं अपने वालिद के साथ सारी रात इबादत कर रहा था और भी कुछ लोग इबादत कर रहे, करीब में एक अरब बैठा था, एक बार इबादत करते करते उसको जरा सी नींद आ गई, एक मस्जिद के अंदर पूरी रात जाग रहे दो मिनट के लिए नींद आ गई। जो तमाम मराजे कराम, मीना के बदले अगर आप मक्के में इबादत करें तो उसमें जो एक ऑप्शन देते हैं कि दो चार मिनट आप सो सकते, तो जब उसको नींद आ गई तो एक बार उसके सर से उसका अमामा गिर गया। ये खाली उलमा के लिबास का हिस्सा नहीं था, पहले आम अरब भी पहनते। जब अमामा गिरा तो हमने देखा कि उसके सर पे एक जख्म है और बिल्कुल ताजा जख्म, ऐसा लगता है कि ये दो चार पांच दस दिन पहले की बात। अब ये चार सेंचुरी पहले, मेडिकल साइंस, सर्जरी, ऑपरेशन, प्लास्टिक सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जरी, किसी चीज में इतनी डेवलपमेंट और तरक्की नहीं थी, तो जख्म बिल्कुल ताजा ताजा नजर आ रहा। मेरे वालिद घबरा गए। ये भी एक हक होता है आपके बराबर बैठने वाले का। मौला के हालात में पढ़िए, यहूदी के साथ भी सफर करते हैं थोड़ा सा, और जहां से रास्ते अलग होते हैं तो थोड़ी दूर उसके साथ चल के उसको खुदा हाफिज कहते हैं, और कहते हैं कि रास्ते के मुसाफिर का भी एक हक है, मस्जिद में बराबर में बैठने वाले का भी एक हक। खैर, तो अब उसके सर पे जख्म देखा, वालिद ने घबरा के पूछा, खैरियत तो है, ये जख्म कैसे लगा, कहां लगा, क्या तुम्हारे साथ ऐसा इंसिडेंट पेश आया? कहा कि ये सिफीन की लड़ाई का जख्म। सिफीन कब? 14 सेंचुरी पहले मौला के जमाने की लड़ाई। और ये वाकया कब का है? सिफीन के 8 सेंचुरी बाद का है, 800 साल बाद का। मेरे बाबा पूछ रहे हैं जख्म कैसे लगा, कह रहे ये सिफीन की लड़ाई का जख्म है। सिफीन की लड़ाई इस्लाम में बहुत अहम एक लड़ाई। याद रखिएगा कि मैं ड्यू टू सम रीजन पैगंबर के जमाने की जो जंगें, उनमें हुनैन की जंग को बहुत अहमियत देता हूं, और इसको जरा डिटेल में पढ़िएगा, हमारे यहां बद्र, ओहद, खंदक, खैबर तक जिक्र होता, हुनैन बहुत इंपॉर्टेंट। बल्कि आजकल सारे वहाबियों जो यजीद के खानदान के लिए एक एक्सक्यूज ढूंढा, उसके लिए तो हुनैन की लड़ाई को समझना और अहम। आपके यहां लास्ट ईयर डीएम टीवी के ऊपर जो प्रॉब्लम हुआ, और इस साल मदीना मुनव्वरा में ओहद के मैदान में थ्रू आउट द ईयर हज का आखिरी वीक छोड़कर पूरे साल ओहद के मैदान में जनाबे हमजा की कब्र के सामने ही प्रॉब्लम रहा। और वो क्या प्रॉब्लम रहा? वो ये कि जब जनाबे हमजा का हम जिक्र करते हैं और जियारत पढ़ते हैं जो बुक में लिखी, तो उसमें ये जुमला भी है कि अल्लाह की लानत हो आपके कातिलों पर ऐ शुहदाए ओहद। और ये कौन थे? ये यजीद का दादा? ये कौन थे? ये यजीद की दादी का हिस्सा था, रोल था, कितना इंपॉर्टेंट हिंदक। पूरा साल जंग ओहद का जो मैदान है मदीने में, वहां भी ये इंसिडेंट हुआ। और लास्ट ईयर तो आपके डीएम चैनल में भी ये बहस आई थी एक और एंगल से। वो क्या? वो एक दो आदमी नहीं कह रहे, नियरली एवरी ग्रुप किताब छीनते और आने के बाद एक आर्गुमेंट करते। वो कहते हमने माना कि अबू सुफियान ने बहुत जुल्म किए और हमने माना कि मुआविया ने भी इस्लाम के खिलाफ जंगों में हिस्सा लिया, लेकिन जिस दिन मक्का फतह हुआ रसूलुल्लाह ने सबको माफ कर दी। जिसे रसूलुल्लाह माफ कर दे, तुम कौन हो उसको क्रिटिसाइज करने वाले? और आज 1400 साल या आफ्टर 1400 ईयर्स उसके ऊपर लानत भेजने वाले। अब रसूलुल्लाह ने फतेह मक्का पे सबको माफ कर दिया। ये बात तो हमारे यहां बच्चे बच्चे को मालूम, बल्कि अभी जो हमारे मोहतरम इंग्लिश ऑरेटर इमाम खुमैनी रिजवानुल्लाह अलैह का तस्किरा कर रहे, जब ईरान का रेवोल्यूशन आया था बिल्कुल शुरू शुरू में, इमाम खुमैनी पर यह क्रिटिसिज्म तो अपने मोमिनीन करते थे कि रसूलुल्लाह ने तो मक्के के दिन सबको माफ कर दिया, और ये नायब रसूल होने के बाद क्यों इस तरह से लोगों को हैंग कर रहे हैं और सजा दे रहे हैं? अब मैदान ओहद हिंदा और अबू सुफियान उनकी जानिब से एक आर्गूमेंट आ रहा, और गालिबन लास्ट ईयर भी डीएम चैनल में जब इमाम अली की सीरियल दिखाई जा रही तो यही एक इतराज हुआ था कि जिसे रसूलुल्लाह माफ कर दे फतेह मक्का को, तुम कौन, तुम्हारी क्या स्टेटस ऑफ पोजिशन कि उस पर क्रिटिसाइज करो? अब ये तो बहुत डिटेल टॉपिक है, लेकिन इन शॉर्ट ये कि जंग हुनैन में इन लोगों ने फिर वही किया था जो बद्र ओहद में किया, और हुनैन की जंग फतेह मक्का के बाद हुई थी। चुनाचे अगर फतेह मक्का में चैप्टर हम क्लोज भी कर ले, तो उसके बाद भी अगर वही गुनाह कर रहे हैं, उसके बाद भी अगर वही गलती कर रहे हैं, ये हुनैन की लड़ाई। और दूसरा इस्लाम में बहुत इंपॉर्टेंट है सिफीन की लड़ाई, जब इसी मुआविया, इसी अबू सुफियान और हिंदा का बेटा मुआविया इमाम अली के अगेंस्ट आ रहा, और इमाम अली को ये जुमला कहना पड़ा कि अल्लाह अल्लाह आज ये दिन भी आ गया कि अली का नाम मुआविया के साथ लिया जा रहा। अरे दो चीजों को कंपेयर किया जाए, जरा सा तो मैच होना चाहिए। मुआविया जैसे आदमी के साथ मेरा नाम, और अभी हमारे मोहतरम इंग्लिश स्पीकर ह्यूमन राइट्स की कुछ बात कर रहे थे। सिफीन की लड़ाई में हमारे सामने दुनिया में सबसे पहले ये चीज आई कि नहीं आई कि सिफीन की जंग जब हो रही, मुआविया की आर्मी पहले आ गई, और आते ही उसने दरिया के पानी पे कब्जा करके पानी पे बैन लगा दिया। करबला तो बाद की चीज है, उससे पहले इमाम अली और उनकी आर्मी पे पानी बंद किया गया। इमाम अली के ऑर्डर पर फाइट बैन, दरिया को रिकैप्चर कर दिया, और उसके बाद कहा कि मौला अब तो हमारा राइट है ना, पहले इन्होंने पानी बंद किया है, आज हमने दरिया वापस लिया, अब हम इन पे पानी बंद करेंगे। मौला ने कहा फिर तुम में और उनमें फर्क क्या रहेगा? अगर तुम भी वही कर रहे हो जो वो कर रहा है, दुश्मन भी क्यों ना हो, पानी किसी पे बंद नहीं हो सकता। ये जो बेसिक नेसेसिटीज है ये ऐसे दुश्मन मुआविया तक को दी जाएंगी। बहुत डिटेल का वाकया है, लेकिन ये तो मेरी जबान पर सिर्फ इसलिए आ गया कि सिफीन की लड़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्हम्दुलिल्लाह अब लोग सीरिया जियारत पे तो हमेशा से जा रहे थे, लेकिन सीरिया जाने वाले अब सिफीन के मैदान भी जाते हैं। और जब आप वहां जाके जियारत करेंगे तो थोड़ी बहुत हिस्ट्री आपको पता चल ही जाएगी। ये सिफीन वही जगह है जहां हमारे यासिर शहीद हुए। ये आदमी मस्जिद कूफा में कहता है ये सिफीन का जख्म। 800 साल के बाद मेरे बाबा घबरा गए, बहुत बड़े आलिम, और इतनी नॉलेज तो मुझे भी थी कि सिफीन कोई एक वीक दो वीक चार वीक पहले की जंग नहीं है, 800 साल पहले 800 ईयर्स अगो। पहले तो बाप ये समझे कि शायद ये आदमी मुझसे मजाक कर रहा, लेकिन देखा वो बड़ा सीरियस है। कहा कि सिफीन की जंग में तुम कहां थे, तुम्हारी तो एज ही 40 साल है।
उसने कहा सिफीन की जंग की बात नहीं कर रहा हूं, हुआ ये कि एक वीक पहले अपने शहर में, अपने गांव में, अपने टाउन में मेरा झगड़ा हो गया एक ऐसे आदमी से जो मुआविया को इमाम मानता था, और वो मुआविया को प्रेस कर रहा है, इमाम अली को बुरा कह रहा। मुआविया वो आदमी है जिसने मेंबरों से इमाम अली पे लानत और कंडेम करने का सिलसिला जारी किया, और वो मुआविया की तारीफ कर रहा। आज आपको इंडिया में, पाकिस्तान में, सऊदी अरब में, वहाबियत में ऐसे बहुत लोग मिलेंगे। मैं अपने मौला की तारीफ कर रहा हूं। एक बार जब हमारा उसका जबानी आर्गुमेंट बहुत बड़ा तो मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा अगर कि आज इमाम अली भी नहीं और आज मुआविया भी नहीं, लेकिन मैं अली वाला हूं, तुम मुआविया वाले हो, अब हम और तुम तलवार निकाल के फैसला कर ले। और ये कह के हमने तलवार चलाना शुरू की। वो आदमी मुआविया वाला ताकत में मुझसे ज्यादा था, जवान भी था और तलवार चलाने का एक्सपर्ट भी था। मैंने तो मौला की मोहब्बत में जोश में आके कहा कि तलवार चलाओ। उसकी तलवार मेरे सर पे लगी, एक जख्म पैदा हो गया। लेकिन इससे पहले कि दूसरी तलवार मेरी गर्दन पर पड़ती, मैंने देखा कि घोड़े सवार तेजी से करीब आया और अपनी तलवार से उस दुश्मन इमाम की गर्दन काट के जाने लगा। मैंने घबरा के आवाज दी कि ऐ शख्स रुक जा, अपना इंट्रोडक्शन तो करा, तू है कौन जिसने मेरी मदद की और मेरी जान बचाई। कहा मैं उसी अली का बेटा और तुम्हारे जमाने का इमाम हूं, तुम्हारी मदद के लिए आया हूं क्योंकि तुम मेरे दादा की हिमायत और सपोर्ट में तलवार चला रहे थे। और याद रखो कि अगर कोई तुमसे पूछे कि जख्म कब कैसे लगा तो कह देना ये सिफीन की लड़ाई का जख्म है, क्योंकि सिफीन की लड़ाई चाहे 800 साल पहले हुई लेकिन जो सिफीन की लड़ाई का पर्पस था उसी मकसद के लिए आज तुमने तलवार चलाई। तो ये वाकया जो डिटेल के साथ अल्लामा मजलिसी ने लिखा, मैंने बहुत शॉर्ट कर दिया, अगर मैं पूरा वाकया पढ़ता तो आपको और मजा आता, लेकिन टाइम नहीं है। तो खुलासा ये कि अब ये जो उसूल जमाने के इमाम ने बताया, एक फार्मूला दे दिया कि अगर सिफीन की लड़ाई 41 हिजरा में हुई हो या 38 हिजरा में हुई हो और कोई आदमी 850 हिजरा में सिफीन के नाम पर तलवार चलाए और सिफीन के मकसद को आगे बढ़ाए, तो वो ये क्लेम कर सकता है कि मैं मौला अली के साथ सिफीन के मैदान में था और मैंने जख्म खाया है। आज 10th of Muharram 61 हिजरी करबला के मैदान में आका हुसैन और आका अब्बास, आका अकबर और आका कासिम ने इस्लाम के जिस मकसद के लिए अपनी जान दी है, अगर आज आप 10th of January 2008 को लेस्टर में बैठकर भी हुसैन के उसी मिशन को पूरा कर रहे हो, हुसैन के उसी मिशन पे अमल कर रहे हो, तो आपको ये हक है, ये आपका राइट है कि आप कह दीजिए कि मैं करबला में था, मैं अब्बास के साथ था, मैं अली अकबर के साथ था। और जब आप ये कहेंगे तो यकीनन अल्लाह एक दिन उनके साथ करेगा। तो वही उसूल जो फया लैतनी कुंतों में छठे इमाम ने बताया, सिफीन की लड़ाई में जमाने के इमाम ने बताया, ये वाला उसूल, ये वाला फार्मूला हमसे अपील करता है कि आज के लेस्टर में बैठ के ये देखो कि करबला के हवाले से तुम्हारी ड्यूटीज क्या हैं। और मैं सबसे पहली बात बहुत शॉर्ट में आज बता रहा हूं, बाकी चीजें बाद में, और वो ये कि पहली ड्यूटी जो है, डोंट फॉरगेट करबला। इसलिए कि इधर मुहर्रम का चांद आया, अदाखाने सज गए, सारे मजमे ने काले कपड़े पहन लिए, दुनिया में हर जगह इस वक्त मजलिसें हो रही हैं, मगर जितना आप इस वक्त हुसैन का गम मनाने के लिए जमा हुए और इंशाल्लाह कल इससे ज्यादा होंगे और 7th of Muharram को तो इमामबाड़ा भर चुका होगा, मगर याद रखिए कि जितना आप तैयार हुए हैं उतना ही दुश्मनान अहले बैत तैयार हुए एंटी करबला प्रोपेगेंडा करने के लिए। पहली चीज डोंट फॉरगेट करबला से मेरी मुराद ये है कि डोंट फॉरगेट आजादारी। इस वक्त करबला के लिए हम अपनी ड्यूटीज तो बाद में करेंगे, पहले करबला हमको याद तो रहे, हमारी मेमोरी में फ्रेश तो रहे। यकीनन कोई आपको करबला से दूर नहीं कर सकता, डर और खतरा आपके यूथ का, शैतान बहुत कैलकुलेटेड वे में काम करता, शैतान को कोई जल्दी नहीं है, वो आराम आराम से काम करता। जो फर्स्ट जनरेशन नॉर्थ अमेरिका में गई,
शैतान ने उनको पहले दिन शराब नहीं पिलाई है, बहुत आराम से आहिस्ता आहिस्ता करके शराब की जानिब लेके गया। वो बहुत डिटेल है, लेकिन दो साल पहले मैं बता चुका हूं। लेस्टर में मैंने दो जुमले दो साल पहले कहे, एक में जरा सी आपकी तौहीन थी कि मैंने एक एग्जाम्पल दी थी M1 और M40 की, और मैं आपसे उसकी माफी मांगू, उसको रिपीट नहीं करता हूं क्योंकि आपको याद होगी। और दूसरी बात मैंने ये कही थी कि शराब से ज्यादा ऑरेंज जूस खतरनाक होता। अब लोगों ने मजलिस तो सुनी नहीं थी, ये जुमला कोट होता रहा। मौलाना ने कहा कि ऑरेंज जूस हराम, मौलाना ने कहा कि शराब पियो कोई वादा नहीं, ऑरेंज जूस ना पीना। नहीं, जो बात मैंने कही थी वो अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपको बताया था कि कराची अर्ली 70s में मेरे वो स्टूडेंट, मेरे दर्स में रेगुलर आने वाले यूथ जो नमाज शब के पाबंद थे, जबकि उस जमाने में नमाज शब एटलीस्ट कराची में बहुत कम पढ़ी जाती थी। और जब मैं पहली दफा नॉर्थ अमेरिका गया लेट 80s में, मैं जुमला कह रहा हूं, मिंबर पे बैठ के कह रहा हूं, ये सच्चा जुमला, इसको जोक ना समझिएगा, ये भी ना समझिएगा कि मौलाना ने जरा कुछ ज्यादा एग्जीक्रेट कर दिया बात को। नहीं, बाकायदा जो 70s अर्ली 70s में नमाज शब तक का पाबंद है, वो लेट 80s में कह रहा है कि मौलाना एक मसला तो बताइए, मैं वाजिब नमाज भी नहीं पढ़ सकता जब तक कि कुछ ड्रिंक ना करूं, जब तक कि मैं अल्कोहल इस्तेमाल ना करूं, जब तक कि विस्की की दो चार चुस्कियां ना लूं, मुझसे नमाज नहीं पढ़ी जाती। नमाज शब का पाबंद ऐसा शराबी कैसे बना? अब उसको जो उसने डिटेल बताई उसका शॉर्ट ये था कि मौलाना अगर कोई शराब का नाम मेरे सामने लेता मैं उसको कत्ल कर देता। मैं शराब के नाम से शराब के दस्तरखान पे नहीं आया, मुझे तो ऑरेंज जूस ने मार दिया। कि जब मैं यहां पे स्टूडेंट बन के यूनिवर्सिटी में आया और मैंने कहा मैं मुस्लिम हूं, बिफोर ईरानी इस्लामिक रेवोल्यूशन ऑफ ईरान कितने लोग अपने आप को इस अंदाज से मुस्लिम कहते थे, क्या मैं प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, मैं शराब नहीं पीऊंगा, लेकिन मैंने कहा और मेरे दोस्तों ने कहा वी रिस्पेक्ट यू। चुनाव जब उनकी कोई पार्टी होती थी सबके लिए अल्कोहल लाया जाता था, मेरे लिए ऑरेंज जूस। क्या वजह है कि शरीयत का मसाला ऐसी टेबल पर बैठना भी हराम है जहां पे अल्कोहल सर्व हो, चाहे आप अल्कोहल पिए चाहे आप अल्कोहल ना पिए, चाहे वो क्रिसमस पार्टी हो, चाहे वो बिजनेस लंच हो, चाहे कुछ भी हो, एक दस्तरखान पर बैठना, चाहे आप में और अल्कोहल में 50 चेयर्स का फासला है, लेकिन अगर टेबल सेम है तो ये बैठना ही हराम है। मुझे सुनिए, कहा कि मुझसे कहा कि तुम्हारे लिए हम ऑरेंज जूस लाएंगे और हम तुम्हारे रिस्पेक्ट करते, वी सैल्यूट यू कि तुम अपने प्रिंसिपल को इतना फॉलो करते हो, लेकिन ऑरेंज जूस पिलाया शराबियों के बीच में बैठा, इधर इसके हाथ में शराब है उधर उसके हाथ में शराब है, दरमियान में मैं ऑरेंज जूस पी रहा हूं। पहले तो शराब की वो नफरत कम हुई जो मैं पाकिस्तान से अपने साथ लेके आया था, फिर शराब मेरे लिए एक नॉर्मल चीज बन गई, एक दिन में नहीं, एक वीक में नहीं, एक साल में नहीं, 3-4 साल, और उसके बाद ये हालत है कि आज मैं नमाज नहीं पढ़ सकता बगैर शराब पिए हुए। तो शैतान को कोई जल्दी नहीं, उसने अल्लाह से कुछ चीजों की गारंटी ले ली है, जिनमें से एक गारंटी उसको ये मिली है तुम्हारी जिंदगी बहुत लंबी है। हाँ, शैतान को जल्दी होती अगर हमारी आपकी तरह से उसको मालूम नहीं होता शायद कल मर जाए, तो भाई जितना इस आदमी को बहका सकते हो आज बहका लो, लेकिन पता है कि अभी बहुत टाइम बाकी, वो आहिस्ता आहिस्ता बहकाता है। आप आजादारी में 100% सॉलिड है, आपके बाद की जनरेशन, इसलिए कि आज का जमाना जितना इन्फॉर्मेशन का जमाना उससे ज्यादा डिस इन्फॉर्मेशन का जमाना। अभी ये मुहर्रम का चार नमूदार हुआ, आजादार तो अपनी आजादारी में लगे, एंटी आजादारी एलिमेंट जो हमारे और आपके दरमियान भी प्लांट कर दिए गए, और उनकी वजह से बेचारे बहुत से यूथ लैक ऑफ नॉलेज की वजह से उनकी बात मानते चले जा रहे हैं। अभी ईमेल सर्कुलेट होने लगेंगे, अभी इंटरनेट की डिफरेंट साइट्स पर ये आर्गुमेंट और डिबेट शुरू हो जाएगी। 14 सेंचुरी के बाद आजादारी की इतनी अहमियत क्यों? ये आलम ताबूत वगैरह इसकी क्या जरूरत? ये काले कपड़े पहनने की क्या जरूरत? ये आजादारी इसका नाम नहीं, आजादारी किसी किताब को पढ़ लेने का नाम। हुसैन के मिशन को आगे बढ़ाओ, बार बार ये कहा जाएगा नाम हुसैन का लिया जाएगा, और खास तौर पर कुछ लोग जिन्होंने शायद अपनी जिंदगी में एक पॉन्ड भी ना दिया हो, لیکن ہر وقت تڑپتے رہتے بیچارے اس غم میں کہ عزاداری پہ کتنے ملین آف پاؤنڈ ویسٹ ہو رہے ہیں. ذرا ان کی ورڈنگ تو دیکھیے, کتنے ملین آف پاؤنڈ ویسٹ ہو رہے ہیں. باقاعدہ انٹرنیٹ پہ میں نے کیلکولیشن دیکھی ہے کہ اگر ہماری شیعہ قوم عزاداری کے اوپر اتنا خرچ نہ کرے تو اتنے ہاسپٹل بن چکے ہوتے, اور اتنے زیادہ لوگوں کو مثلا جاب مل چکا ہوتا, اور اتنی انڈسٹریز ہماری لگ چکی ہوتی. چنانچہ عزاداری کے اوپر خرچے کو کم کرو اور دوسرے کوئی جو ہیلدی قسم کے پروجیکٹ ہے وہاں پہ لگاؤ. اتنا ٹائم عزاداری کو کیوں دے رہے ہو؟ یہ ہے کیا؟ یہ فقط ریچولز ہیں. اور یہ بھی دیکھیے کہ عزاداری جسٹ آفٹر رہ جاتی, ان میں سے ہر چیز حج کے اوپر بھی سیم کامنٹس اور اعتراض ہو سکتا. حج بھی ایک ریچول نظر آتا, حج پر بھی بہت زیادہ خرچہ ہوتا ہے. اسلام حج کو اتنا اہم واجب رکھا. ایک جملہ میں نے شروع میں کہا تھا نا کہ نارملی پہلی مجلس میں حج کا ذکر کرتا ہوں, لیکن اس سال میں نے اپنی یہ ہیبٹ چینج کر دی. عزاداری کے خلاف نہ صرف یہ کہ پورا سال پروپیگنڈا ہوتا, بلکہ جیسے ہی محرم کا چاند نمودار ہوتا اور آپ حضرات عزاداری کی طرف آتے ہیں, آپ کے یوتھ کو عزاداری سے ہٹایا جا رہا ہوتا اور آپ کو معلوم بھی نہیں ہوتا, آپ کو پتا بھی نہیں ہوتا ان پہ کیا کام ہو رہا. وہ بھی ابھی 50-50 ہٹیں گے, پورے نہیں ہٹیں گے, لیکن اس کے بعد کی جو جنریشن آئے گی. چنانچہ ڈونٹ فارگیٹ عزاداری. کربلا کے کانٹیکسٹ میں ہماری سب سے پہلی ڈیوٹی یہی کہ جس انداز سے آپ کے باپ دادا اور آپ کے بزرگوں نے عزاداری کا ایک انسٹیٹیوشن بنا کے آپ کو دیا, آپ ایز اٹ از اسے اپنی نیکسٹ جنریشن کو پاس کریں. ہاں, اگر اس میں کوئی حرام ہو رہا, اگر اس میں کوئی گناہ ہو رہا, وہ الگ بات ہے, لیکن اپنی طرف سے اپنے من سے یہ فیصلہ کر دینا کہ یہ عالم غلط ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے, یہ اذاخانہ غلط ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے, یہ ماتم غلط ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے, اتنا پیسہ اس پہ خرچ نہیں ہونا چاہیے, نظر و نیاز نہیں ہونا چاہیے. دیکھیے یہ عزاداری جس کی وجہ سے کتنا بڑا فرق پڑ رہا اسلامک ہسٹری کے دو ایونٹس میں, جو کیلنڈر کے اعتبار سے لیس دین 2 ویکس, غدیر کا واقعہ بھی اسلام میں اور کربلا کا واقعہ بھی اسلام میں. غدیر کا واقعہ 18th of Dhulhijja اور عزاداری شروع ہوتی ہے چاند رات یعنی 1st of Muharram, ہارڈلی 12 ڈیز. کربلا کے واقعے کے وٹنس کوئی نہیں تھے, صرف حسین کا ایک چھوٹا سا گھر تھا جس میں ایک ہی مرد زندہ تھا, سجاد. اور کربلا کے واقعے کے وٹنس, غدیر کے واقعے کے وٹنس 120,000 مسلمان تھے. اور جیسا کہ ابھی آپ نے انگلش اسپیکر سے سنا کہ رسول اللہ نے امام علی کو اتنا بلند کیا, اتنا اونچا کیا, دور دور تک پورے مجمع نے دیکھ لیا کہ وائٹ انڈر دا آرم پٹ نظر آنے لگا, اتنا اونچا کیا, 120,000 مسلمانوں کو دکھایا. اور اس کے بعد آج غدیر کوئی نہیں جانتا, صرف ہم مومنین کرام کو معلوم ہے, اور ان میں سے بھی اکثر کو ڈیٹیل نہیں پتا, لیکن چلے معلوم ہے کہ غدیر کا واقعہ ہوا. اور کربلا کا واقعہ ساری دنیا جان چکی ہے, کیوں آخر, جبکہ کربلا کے واقعے کا وٹنس کوئی نہیں ہے اور غدیر کے واقعے کے 120,000 حاجی اور صحابی وہ وٹنس ہیں. اس لیے کہ غدیر کے واقعے سے ریلیٹڈ کچھ اس انداز کا انسٹیٹیوشن نہیں بنا جو کربلا کے واقعے سے ریلیٹڈ عزاداری کا انسٹیٹیوشن بنایا. یہ عزاداری ہماری ہے جس نے کربلا کے واقعے کو ہر جنریشن کے لیے فریش رکھا ہے. جب کربلا یاد ہو تو اگلا اسٹیپ آئے گا کہ ہماری ڈیوٹی کیا, ہماری ریسپانسبلٹی کیا. اگر لوگ کربلا ہی بھول جائیں جیسے غدیر کا واقعہ, کتنے مومنین یہ سوچتے ہیں کہ غدیر کے حوالے سے ہماری ڈیوٹی کیا. پہلے تو غدیر ہی یاد دلانا پڑتی ہے ہم مسلمانوں کو. تو کربلا کے اندر یاد رکھیے گا کہ عزاداری بہت امپورٹنٹ رول پلے کرے گی آپ کی ساری ڈیوٹیز کے لیے. اس کو نہ ختم ہونے دیجئے, نہ ویک ہونے دیجئے, نہ چینج ہونے دیجئے. جو پہلے حرام ہے اسے نکالنا ہے. مثلا اگر کہیں عزاداری میں بے حجاب عورت جاتی ہے تو اس کو حجاب کروانا, عزاداری نہیں بند کرنا ہے. کچھ لوگ غلطی کو اس طرح ریکٹیفائی کرتے ہیں کہ جی وہ بے حجاب عورت تو آ رہی ہے عزاداری میں, तो बंद कर दो जुलूस, ताकि जुलूस ना हो तो ये औरत भी बाहर ना निकले। ये शैतानी तरीका है किसी गलती को रेक्टिफाई करने का। हमारे यहां इंडिया और पाकिस्तान में एक जोक बहुत मशहूर कि किसी औरत ने पासपोर्ट बनवाया। हमारे यहां चूंकि हस्बैंड का नाम बहुत अहम समझा जाता, चुनाचे उसने पासपोर्ट बनवाया मिसेस फुला फुला, वाइफ ऑफ मिस्टर फुला फुला। पासपोर्ट ऑफिसर ने गलती से वाइफ के बदले उसको विडो कर दिया, फुला मिसेस फुला विडो ऑफ मिस्टर फुला। वो घबरा गई, अपने शौहर को लेके, 6 फीट का शौहर उसको लेके पासपोर्ट ऑफिसर के सामने गई, कहा कि आपने गलत लिख दिया, मुझे लिख दिया मैं बेवा हूं। बेवा कहा, मेरा शौहर तो जिंदा है। ऑफिसर ने कहा कोई बात नहीं है, मिस्टेक हो जाती है, वी आर ह्यूमन, मैं अभी इसको रेक्टिफाई करके सही करता हूं। और ये कहे कि उसने पिस्तौल निकाला, 3 गोलियां उसके शौहर के सीने में उतार दी, वो मर गए। तो अब तो तुम बेवा हो गई ना, देखो गलती ठीक हो गई। मैंने लिखा था बेवा यानी विडो, तो तुम विडो हो गई हो ना। क्या ये तरीका होता है कॉमन सेंस में गलती ठीक करने का? जी वो खुला जगह जुलूस के अंदर औरतें बेपर्दा आती हैं, तो उस बेपर्दा औरत को बापर्दा बनाओ, करबला के हवाले से उसको हिजाब याद दिलाओ। ये सही तरीका है करबला का, ये नहीं है कि आपने कहा जुलूस बंद। अगर करबला के हवाले से उसका हिजाब तुमने करवा दिया, तो आज जुलूस में भी हिजाब के साथ है, कल सुपरमार्केट में भी हिजाब के साथ होगी, परसों बर्थडे पार्टी में भी हिजाब के साथ होगी। और अगर तुमने जुलूस ही बंद कर दिया, तो फिर कैसे उसको याद दिलाओगे? तो हमारे यहां जो रिफॉर्म का तरीका आया ये गलत आया। जो हराम है उसको ठीक करो, लेकिन आजादारी में कोई कमजोरी ना आने पाए, एक बात। और आजकल अब आप देख लीजिए 10 दिन जो आपके यूज को लिटरेचर मिलेगा, जो आपके यूज को इन्फॉर्मेशन मिलेगी इंटरनेट से, जो आपके यूज के नाम ईमेल्स आएंगे मुख्तलिफ फोरम से, सबका आखिरी लाइन या पिंच लाइन ये होगी कि जैसी आजादारी हमारे वालिदैन करते थे वो वेस्टेज ऑफ टाइम है, वेस्टेज ऑफ मनी है, कोई पर्पज सॉल्व नहीं हो रहा, उस आजादारी को खत्म करो। करबला के हवाले से सबसे बड़ी ड्यूटी जो हर सेंचुरी में रही है कि करबला कभी आपकी मेमोरी से न निकलने पाए, और आजादारी वो तरीका है जिससे करबला आपको याद रहेगी। फिर भी घंटा हो गया, इसलिए अगली बात मैं बहुत जल्दी से मुकम्मल कर दूं। मुझे अंदाजा नहीं था कि मैं घंटे की मजलिस पढ़ जाऊंगा। एक दूसरी बात, मगर इतना याद रखिए कि मैंने जो जुमला कहा ना कि आपके यूज, मगर एक बहुत बड़ा आजादारी के कॉन्टेक्स्ट में खतरा आपके लिए भी, बड़ों के लिए भी। और वो ये है कि आजादारी को खाली इमामबाड़े तक लिमिटेड ना कीजिए। पैगंबर की एक बहुत मशहूर हदीस है, अगर कि उसका कॉन्टेक्स्ट कुछ और, मगर उसमें सारा इस्लाम आ जाता। पैगंबर ने फरमाया, तुम्हें मालूम है कि यहूदी या जूस वो क्यों मिसगाइडेड हुए, क्यों गुमराह हुए? यहूदी ऐसे गुमराह हुए कि आप दिन में 5 नमाजों में 10 टाइम्स कहते सिराक अल्लजीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ूब अलैहिम, खुदा बंदा हमें उनके रास्ते पे न चला जिन पे तेरा गजब आया है। ये कौन है? ये यहूदी ऐसे गुमराह हुए कि अल्लाह का गजब आया, लेकिन बेसिक फॉल्ट कहां था, मिस्टेक कहां थी? वो सच्चे नबी को मानने वाले थे, मूसा से लेके दाऊद, दाऊद से लेके सुलेमान, तमाम अंबिया को मानते थे। गलती कहां पे हुई? पैगंबर बता रहे हैं कि देखो, मिस्टेक शुरू में बहुत छोटी होती है, बाद में उसके नुकसान या कॉन्सिक्वेंसेज, खत्म मेरी बात। पैगंबर ने कहा गलती उनसे ये हुई कि उन्होंने अपने रिलीजन को अपने सैनिक हुआ या अपने प्लेस ऑफ वर्शिप तक लिमिटेड कर दिया, अपने सैनिक गुआ से बाहर रिलीजन लेके नहीं आए, खास तौर पे उनका घर। पैगंबर का जुमला है, ये पैगंबर की वर्डिंग है, उन्होंने अपने घरों को कब्र बना दिया। असाबे रसूल ने घबरा के पूछा, या रसूल अल्लाह क्या मतलब कब्र का? पैगंबर ने कहा कब्र किसे कहते हैं? कब्र उसे कहते हैं जहां से नेकी का कोई काम आसमान नहीं जाता। मरने वाला तो बार बार फरिश्तों से कहता है, खुदा से कहता है, खुदा बंदा आप इजाजत दे दे, आप नमाजें पढ़ लूंगा, आप रोजे रख लूंगा, लेकिन कब्र में जाने के बाद नेकी का कोई काम करो बेकार है, वो वहां से निकलेगा ही नहीं। यहूदियों ने अपने घरों को कब्र बना दिया, सारी इबादत मस्जिद में होती, सारी नेकियां मस्जिद में होती, सारा दिन मस्जिद में होता, सारी तबलीग मस्जिद में होती, घर में आए बिल्कुल चेंज, कोई नेकी हो ही नहीं रही है। अब इसकी बहुत सारी एग्जाम्पल इस्लाम के अंदर भी कि क्यों इस्लाम ने कहा वाजिब नमाज मस्जिद में पढ़ो तो सुन्नत नमाज घर में पढ़ो, क्यों इस्लाम ने कहा कि औरत के लिए घर में इबादत करना बेहतर है, छोटे छोटे गोद के बच्चे वो तो घर के अंदर ही रहेंगे ना, वो देखेंगे अपनी माओ को तो उनके कान में अल्लाह रसूल का नाम पैदा होते ही पढ़ने लगेगा, ये पूरा टॉपिक आगे आएगा। मगर खास आज का जो टॉपिक बन गया उसके हवाले से बात करो कि ऐसा ना हो कि आजादारी फकत इमामबाड़े तक है, आपका अगर बच्चा इमामबाड़े में आए तो उसको लगे कि हुसैन आ गए, और घर में जाए तो कुछ लगे ही नहीं, जैसे सारा साल वैसे 10 दिन भी टीवी वैसे ही चल रहा, अच्छे अच्छे खाने वैसे ही पकाए जा रहे हैं, नए नए कपड़े वैसे ही पहने जा रहे हैं। देखिए आज की दुनिया यकीनन बहुत आगे चली गई, और आप हराम और हलाल मुश्तहद और मर्जे फतवा और तौज़ीहुल मसाइल की बात भी करेंगे, लेकिन अगर पहले हम लोग 68 डेज इन चीजों का ख्याल करते थे एटलीस्ट 11-12 मुहर्रम तक, तो आपके बच्चे को पता चले कि वाकान गम है तो दिल से हम गम मना रहे हैं। ये ना हो कि गाड़ी में बैठ के आप निकले या गेट से बाहर हुए और बातों का अंदाज, लिबास का अंदाज, खाने का अंदाज, जिंदगी के नॉर्मल है। आज भी दुनिया में कितनी जगह मोमिन है पहले 12 दिन नए कपड़े नहीं पहनते, पहले 12 दिन बहुत अच्छे अच्छे खाने नहीं खाते, किसी किस्म का फीड बच्चों को नहीं दिया जाता। चले पहले तो हम 68 डेज करते थे, बहुत ज्यादा, लेकिन एटलीस्ट बच्चे को घर में भी पता चले कि आशूरा आ गया है, आजादारी का वक्त आ गया है, फातिमा जहरा ने बाल खोल के मातम करना शुरू कर दिए हैं, उसे ये ना लगे कि आजादारी खाली सेंटर तक है, उसे लगे आजादारी हर जगह है। जब ये लगेगा तो इराक के मोमिनीन की तरह, लबनान के मोमिनीन की तरह, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मोमिनीन की तरह से वो करबला वालों के रास्ते पर भी चलेगा। लेकिन अगर वो ये समझे कि आजादारी या करबला खाली सेंटर की दीवारों के अंदर है, इसके बाहर ना करबला है ना आजादारी है, तो वो कहां से अपनी ड्यूटीज अंजाम देगा। तो दो चीजें, एक आजादारी के पूरे इंस्टीट्यूशन पे अटैक, वो आपके यूथ को टारगेट बना के हो रहा, और एक आजादारी को लिमिटेड से लिमिटेड करके खाली इमामबाड़े तक रखो। यकीनन ऐसा माहौल घर का नहीं बन सकता, लेकिन थोड़ा सा कुछ बच्चे को ये लगे कि ये 10 दिन बाकी साल से जरा डिफरेंट डेज हैं, ये 10 दिन में मैं लेस्टर के मोमिनीन से कह रहा हूं, वरना हमारे यहां इंडिया पाकिस्तान में अब तक एटलीस्ट 40 वरना 68 डेज तक फुल फ्लेज आजादारी ना सही, तब भी बच्चे को घर के अंदर इशारे मिलते रहते हैं। और याद रखिए, भाई ये जुमला एक मजलिस बनेगा तरबियत औलाद, याद रखिए बच्चा मस्जिद मदरसे और इमामबाड़े में बाद में सीखता है, पहले वो घर में सीखता है, पहले वो माँ की गोद में सीखता है, पहले वो नाना के पास जाके सीखता, पहला बच्चे का मदरसा उसका घर है, बाद में ये मदरसे आते हैं। और यही हुसैन का वो जुमला था जो हमारे मोहतरम इंग्लिश ऑरेटर ने भी अपनी इंग्लिश स्पीच के आखिर में बयान किया था कि नाना से हुसैन का जो वादा था, वो रात आ गई कि हमारे और आपके लिए भी जरा सी ये डिफरेंट रात तो है, कभी इतनी बड़ी तादाद में वर्किंग डे में लोग आ गए, लेकिन वाकान ये रात कैसी है ये कोई फातिमा जहरा के दिल से पूछे, वाकान ये रात जो आ रही है कौन से गम को लेके आ रही है, ये कोई सानी है जहरा जैनब कुबरा से दरियाफ्त करे, अरे कोई जाके कब्र रसूल पे पैगंबर के रोने की आवाज सुने। 28 रजब की तारीख करबला का स्टार्टिंग प्वाइंट है, जब मेरे आका हुसैन को अपना वो वादा पूरा करने के लिए जो अपने नाना से बचपन में किया था, और अपना वो मिशन पूरा करने के लिए जिसके लिए फातिमा ने गर्मियों में चक्कियां पीस पीस के अपने लाल हुसैन को पाला था। 10th ऑफ मुहर्रम को एक रिवायत डिटेल से पढ़ूंगा, उसका सिर्फ एक जुमला कि जब आखिरी रुख्सत के मौके पर नन्नी सकीना ने बाबा की गोद में लेट कर कहा, बाबा मैं आपको मख्तल में न जाने दूंगी, अरे मेरा सारा घर गया है, कोई वापस नहीं आया है। और हुसैन की समझ में नहीं आ रहा था कि सकीना को कैसे राजी करे। एक बार सकीना की आंख लग गई और थोड़ी देर के बाद आंख खोली, कहा बाबा जाइए खुदा हाफिज। हुसैन ने कहा सकीना अभी रोक रही हो, अभी भेज क्यों रही हो? कहा कि बाबा जैसे ही मेरी आंख लगी, ख्वाब में मैंने देखा मेरी दादी फातिमा ज़हरा आई है और कह रही है, ऐ सकीना मेरे हुसैन का रास्ता न रोक, वो वक्त आ गया जिसके लिए मैंने गर्मियों में चक्कियां पीस पीस के अपने लाल को पाला है। बच्चे का पहला मदरसा उसकी माँ की गोद है, उसके नाना का घर है। हुसैन ने नाना के घर में भी ये सुना और माँ की गोद में भी यही पैगाम मिला, मैं लाल जब इस्लाम पर वक्त पड़े तो तुम्हें अपनी जान कुर्बान करना है। यही वजह है कि कर्बला जाते वक्त हुसैन ने खाली जिंदों को खुदा हाफिज ना कहा, माँ की कब्र पे भी गए और कहा माँ तेरा हुसैन जा रहा है, आखिरी सलाम करने आया है, खुदा हाफिज। लेकिन मेरा दिल कहता है कि कोई ताज्जुब नहीं है, फातिमा की कब्र से आवाज आई हो, लाल खाली तू नहीं जा रहा है, तेरी माँ भी तेरे साथ चल रही है। अरे तू कर्बला जाएगा तो फातिमा कर्बला भी पहुंचेगी, अरे मेरी बेटी शाम जाएगी तो फातिमा शाम भी पहुंचेगी। और फिर आखिर में पलट के आते रोजा रसूल पर, एक बार मेरा आका हुसैन नाना की कब्र पे पहुंचता है, पहले तो उस तरह सलाम किया जैसे आप सलाम करते हैं, अस्सलामु अलैका या जद्दा, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। नाना आपका हुसैन आपको अलविदाई सलाम करने आ रहा है, अरे मेरा आखिरी सलाम लो, नाना खुदा हाफिज। ये कह के हुसैन चला, मगर आजादारो फिर हुसैन पलट के ना आया। हुसैन की बहन ज़ैनब नाना की कब्र पे वापिस आती है और कहती है, नाना मेरा माँ जाया तुझे सलाम करके गया था, वो तो कर्बला में रह गया, मैं उसकी तरफ से एक तोहफा लेके आई हूँ। और ये कह के ज़ैनब ने हुसैन का खून भरा कुर्ता रसूल की कब्र पे बिछा दिया। रावी कहता है कब्र से रसूल के रोने की आवाज आने लगी, मस्जिद नबवी की दीवारें हिलने लगी। ज़ैनब ने कहा, नाना ये तो पहला तोहफा था, अरे दूसरा तोहफा तो मैं तुझे दिखा भी नहीं सकती। अरे नाना मेरी कमर, कर्बला से शाम तेरी ज़ैनब ने इतने कोड़े खाए हैं, अब तक कोड़ों के जख्म ताजा नजर आ रहे। अला वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون। खुदा बंदा मेरे मजलूम आका हुसैन के अपने नाना को अलविदाई सलाम कहकर कर्बला की कुर्बानियों का वास्ता हमें भी हर दौर और हर जमाने में जिस जगह पे हम बैठे कर्बला के हवाले से अपनी ड्यूटीज अदा करने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगारा हमारे इन आंसुओं का वास्ता जो हमारी आंखों से निकले, इन्हें रूमाले ज़हरा में जमा करके रोजे कयामत हमारी शफात का जरिया बना। परवरदिगारा इस मजलिस में जो मोमिनीन और मोमिनात आए हैं, खुदावंदा इनकी आजादारी का वास्ता, इन्हें गमे हुसैन के सिवा दुनिया और आखिरत की हर परेशानी से महफूज फरमा। परवरदिगारा मैदान कर्बला के बिखरे लाशों का वास्ता, हमारे तमाम मरहूमीन को आले इल्लीन में रसूल और आले रसूल के जवार से मुलक फरमा। और खुदावंदा इन मजालिम के इंतकाम के लिए अपनी आखिरी हुज्जत वारिस मासूमीन इमाम जमाना के जहूर में ताजील फरमा। मातम